गाथा 109 का स्वाध्याय अपन ने किया था कि जो दुर्वचनों को, सहधर्मी जनों के अनादर को और उपसर्गों को कषाय रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर सहन कर लेता है, उसको वेउला निर्जरा हवे, बड़ी भारी निर्जरा होती है कर्मों की। अब इसके आगे 110वीं गाथा है, ऋण मोयणम वमन्नई जो उवसग्गम परिसहं तिव्वम पावफलम मे एदम मया विजम संचितम पुव्वम। जो तिव्वम उपसर्गम परिसहम, जो तीव्र उपसर्ग को और परिसह को, उपसर्ग का अर्थ कोई उपद्रव हो जाए, कोई संकट आ पड़े, और परिसह यानी कष्ट है सामान्य। जो उपसर्ग और परिसहों को क्या समझते हैं, ऋण मोयणम, ऋण से छूटना मानते हैं, ऋण यानी कर्ज, उपसर्ग हो रहा है या परिसह हो रहा है तो वे मुनिराज समझते हैं कि चलो कर्ज से मुक्ति हो रही है। क्यों? एदम मे पाव फलम, ये मेरे ही पाप का फल है। जम मया पूर्वम संचितम, जो मैंने पूर्व में संचित किया था, मैंने पाप कमाया था तो उसका फल मुझे मिल रहा है, इसलिए आज मैं ऋण से मुक्त हो रहा हूँ। तीव्र उपसर्ग हो, तीव्र परिसह हो, उस समय वो ऐसा विचार करते हैं। यानी ये निर्जरा करने वाले साधुओं की परिणति बताई जा रही है कि निर्जरा कर्मों की, बड़ी भारी निर्जरा किनको होती है। पिछली गाथा में कहा था कि दुर्वचनों को सह लेते हैं, सहधर्मी जनों के अनादर को सह लेते हैं, उपसर्ग को सह लेते हैं, लेकिन कषाय रूपी शत्रुओं को जीत कर, लाचार होकर नहीं। लाचार होकर तो बहुत से लोग बहुत कुछ सह लेते हैं, कभी सामने वाला अधिक शक्तिशाली हो तो फिर वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, चुपचाप सहना पड़ता है। कुछ कर ही नहीं सकते ना, कुछ कर ही नहीं सकते और सह लो तो इसमें निर्जरा का कोई स्थान नहीं बनता। लेकिन क्षमता होते हुए भी शांतिपूर्वक सहन करना निर्जरा का कारण है। और तीव्र उपसर्ग या परिसह आने पर साधु विचार करते हैं कि ऋण मोयणम, ये मेरे ऋणों से छुटकारा है। ऋण मुक्ति नहीं कहा, ऋण मोचन कहा है। मुक्ति और मोचन दो शब्द हैं, धातु एक ही है, मुच। मुच धातु से क्तिन प्रत्यय कर दो तो फिर मुक्ति बनता है, क्ति प्रत्यय। और फिर मुच धातु से ल्युट प्रत्यय करो, मोचन। अथवा उसको कारित संज्ञक बना ले तो क्या होगा, मुक्ति का अर्थ होता है छूटना और मोचन का अर्थ होता है छुड़ाना। अब ऋण मुक्ति कब होती है, जब खुद अपन अपना कर्ज भर दें तब। और ऋण मोचन कब होता है, जब कोई अपना मित्र सहयोग दे करके उस कर्ज से अपने को छुटकारा दिला दे। अंतर समझ में आ रहा है? यानी जैसे उदाहरण के लिए, एक आप अपनी फीस भर रहे हैं लेकिन कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं तो फिर दोस्त अपनी तरफ से दे देता है कि चलो ये हमारी तरफ से भर दो, तो फिर वो एक सहयोग हो गया। उसी प्रकार साधु ऐसा समझते हैं कि ये जो हमारी साधना में जो बीच में ये कष्ट आ रहे हैं, तीव्र कष्ट अथवा ये उपसर्ग हो रहे हैं, ये उपसर्ग हमें उस पुराने ऋण से छुटकारा दिला रहे हैं। नहीं तो हमें तो ऋण मुक्ति, मतलब अपना कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा, लेकिन हमें नहीं चुकाना पड़ रहा है। इन कष्टों के सहयोग से वो कष्ट, वो जो ऋण है वो अपने आप चुक रहा है, हमें अपनी तरफ से कुछ भी देना नहीं पड़ रहा है। तो इसको ऋण मोचन मानते हैं। और मैं एकदम पाप फलम, मेरे ही पाप का फल है ये। जब मैं पूर्वम संचितम, जो मैंने पहले संचित किया था, इकट्ठा किया था, जो चिन्ते शरीरम ममत्त जनयम विनस्सरं असुयिम दंसनान चरितम सुहजनयम निम्मलम निच्चम। ऋण का उपयोग ज्यादा होता है प्राकृत भाषा में। जो चिंते ही, जो चिंतन करता है, क्या चिंतन करता है कि शरीरम ममत्त जनयम, शरीर ही ममता उत्पन्न करने वाला है। यानी जरा से चूके और तुरंत ममता पैदा हो जाती है, ये मेरा है। ममता को पैदा करने वाला ये शरीर है। विनश्वरम, लेकिन नश्वर है, रहने नहीं वाला, और असुयम, अपवित्र है। फिर इससे विपरीत दंशन नान चरित्रम, दर्शन ज्ञान और चारित्र, ये सुह जनयम, सुख के जनक है। अथवा सुह शब्द की छाया करो तो शुभ भी होता है, प्रशस्त को उत्पन्न करने वाले हैं। और निम्मलम, निर्मल है, और निच्चम, नित्य भी है। दर्शन ज्ञान और चारित्र नित्य भी है, ये बड़ी विशेष बात बता रहा है। जैसे अभी ये माना जाता है कि कार्य हो जाने पर कारण समाप्त हो जाता है, लेकिन ऐसा एकांत जैन दर्शन में नहीं है। जैन दर्शन में कुछ कारण कार्य होने पर शांत हो जाते हैं। जैसे खिचड़ी बन गई तो आपने गैस बंद कर दिया, तो अग्नि जो थी खिचड़ी बनाने में कारण, वो अब शांत है, खिचड़ी बन चुकी है। तो ये एक प्रकार का कारण हो गया। दूसरे प्रकार का कारण वो होता है कि जो कार्य होने पर भी रहता है, विद्यमान रहता है। जैसे फल का कारण क्या है, वृक्ष के ऊपर जो फल लगते हैं तो किस कारण से लगते हैं, मतलब उसका आधार, उसका कारण वृक्ष की शाखा है। लेकिन फल तैयार होने के बाद भी शाखा नष्ट होती है क्या? नहीं होती। तो शाखा फल का कारण होते हुए भी, फल रूपी कार्य पूर्ण हो जाने के बाद भी समाप्त नहीं होती। उसी प्रकार मोक्ष का कारण क्या है, बोलो क्या? इसमें मौन बैठे हैं आप, जैसे कि कोई खूंखार प्रश्न कर दिया हमने। रत्नत्रय मोक्ष का कारण है। अब रत्नत्रय जो होता है, क्या वह मोक्ष के उपरांत समाप्त हो सकता है? मोक्ष तो कार्य हो गया, रत्नत्रय कारण हो गया, लेकिन रत्नत्रय एक ऐसा कारण है कि कार्य होने पर भी समाप्त नहीं होता। अब ये कैसे बोलेंगे आपके नहीं होता? क्या सिद्ध भगवान में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होते हैं? बताओ। यथाख्यात चारित्र 14वें गुणस्थान तक के था, उसके आगे यथाख्यात चारित्र नहीं है। फिर कोई घबराने की बात नहीं। ज्ञान दर्शन होते हैं और चारित्र होता है। सिद्ध भक्ति की अंचलिका कभी पढ़ी है आपने? आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने क्या लिखा है? इच्छा विभंते सिद्ध भक्ति का उस सगो को तस्सालोचे। फिर आगे सम्मनान, सम्मदंसन, सम्मचरित जुत्ताणम, क्या मतलब हुआ? लेकिन इन पांच चारित्रों में उस चारित्र का नाम नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि के अंत में लिखा है अव्यपदेश भाग चारित्रम। सिद्ध परमेष्ठी के पास जो चारित्र होता है उसको इन गुणस्थान मार्गणाओं में कोई नाम नहीं दिया गया है। गुणस्थान मार्गणाओं में जो चारित्र के नाम है, पांच प्रकार के चारित्र, सामायिक, छेदोपस्थापना, पर्याय विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात। लेकिन सिद्ध भगवंतों का जो चारित्र है वो अनाम चारित्र है। चारित्र का अभाव नहीं है, अनाम चारित्र, क्योंकि अभाव कभी भी गुणों का नहीं हो सकता। गुणों का यदि अभाव होगा तो तो गुणी का भी अभाव हो जाएगा। अगर चेतना गुण आत्मा का है, चेतना गुण का अभाव हो गया तो चेतन रहेगा क्या? चेतन गुणी है और चेतना गुण है। चेतना के अभाव में अर्थात गुण के अभाव में चेतन यानी गुणी रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। उसी प्रकार दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर्य आदि आत्मा के अनंत गुण हैं और अनंत गुण में से किसी भी गुण का लोप करने पर गुणी नहीं रह सकता। इसलिए सिद्ध भगवान में सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चारित्र भी है। सम्यक ज्ञान कौन सा वाला है? कल पढ़ा था अपन ने, पांच सम्यक ज्ञान कौन से होते हैं? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान और केवल ज्ञान। तो सिद्ध भगवान के पास कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। सवाल ही नहीं उठता, कोई दूसरा ज्ञान तो हो ही नहीं सकता ना वहां पर। फिर दर्शन कौन सा है? क्षायिक, क्षायिक दर्शन है। चारित्र है तो क्षायिक चारित्र, लेकिन अब उसका कोई वैसा नाम नहीं है। उसका नाम ना सूक्ष्म सांप्राय है और फिर उन पांचों में से कोई नाम नहीं है उस चारित्र का। तो इस तरह गुण जो होते हैं वो गुणी के लिए नियामक होते हैं। वैशेषिक दर्शन में उन्होंने युत सिद्धि मानी, बोले ज्ञान नाम का गुण जो है वो आत्मा में आता है तो आत्मा उस ज्ञान गुण के संयोग से, देखो संयोग माना, संयोग दो वस्तुओं का होता है, एक का संयोग नहीं हो सकता, तो उस ज्ञान गुण के संयोग से वो ज्ञानी होता है। जैन दर्शन में कहा गया है कि ज्ञान गुण और आत्मा गुणी है, गुण गुणी से पृथक नहीं हो सकता। यदि गुण गुणी से पृथक होगा तो फिर वो गुणी गुणी कैसे कहलाएगा? और यदि गुण को स्वतंत्र मान ले तो वो रहेगा कहाँ पर? बिना आधार के किस कहाँ रहेगा? हवा में रहेगा क्या? आकाश में रहेगा क्या? ज्ञान गुण ऐसे यहाँ चक्कर लगा रहा है क्या और फिर बाद में एकदम आत्मा में चला जाए और आत्मा ज्ञानी बन जाए? ऐसा नहीं है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, गुण जो होते हैं वो द्रव्य के आश्रित होते हैं, अकेले नहीं हो सकते और उन गुणों में कोई दूसरा गुण नहीं होता। निर्गुणा क्या मतलब हुआ? ज्ञान गुण में सुख नहीं होगा, सुख एक पृथक गुण है आत्मा का, दर्शन गुण उससे पृथक है। इस प्रकार पृथक पृथक गुण होते हैं, सारे गुण एक गुणी में तो हो सकते हैं लेकिन एक गुण में कोई दूसरा गुण नहीं हो सकता। तो जो शरीर का चिंतन करते हुए विचार करते हैं कि ये ममत्व को उत्पन्न करता है, सारे संसार के जीव शरीर के कारण मोह ममता में उलझ जाते हैं और विनश्वरम फिर भी ये शरीर नष्ट हो जाता है। कितनी ममता होती है संसारी प्राणी को अपने शरीर के प्रति, लेकिन तो भी ये शरीर एक क्षण में नष्ट हो जाता है। और अस्विम ये अपने आप में पवित्र भी नहीं है, अपवित्र होता है। व्यावहारिक शुद्धि की बात अलग है, उसका भी अपना स्थान है, व्यर्थ नहीं है व्यावहारिक शुद्धि, उसका अपना महत्व है। मूलाचार ग्रंथ में आता है लोक जुगुप्सान निवारयेत, साधु को लोक जुगुप्सा का निवारण करना चाहिए, माने लोक अर्थात जनता जिस वस्तु को या जिस परिस्थिति को ग्लानि का निमित्त मानती है, ऐसी परिस्थिति में या ऐसी वस्तु का आहार में सेवन नहीं करना, वो भी एक प्रकार से अभक्ष हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति के हाथ से भी आहार नहीं लेना जो काय शुद्धि से रहित है। वो तो नवधा भक्ति में मन शुद्धि भी आवश्यक है, वचन शुद्धि भी है और काय शुद्धि भी। काय शुद्धि के अंतर्गत तो और भी बहुत सारी बातें होती, सूतक पातक न हो और अन्य भी ऐसी कुछ बातें हैं। पिछले साल ऐसी चर्चा निकली थी कुछ कि किसी को रक्त चढ़ाया जाए तो फिर क्या होगा, उसकी काय शुद्धि रहेगी कि नहीं रहेगी। तो बोले कि अपने रिश्तेदारों का चढ़ाओ तो फिर 6 महीने तक वो आहार नहीं देगा, और अगर अनजान रक्त चढ़ा हो तो फिर आपको पता नहीं वो किसका चढ़ा है, वो म्लेच्छ का चढ़ा है या आर्य का चढ़ा है ये भी नहीं पता, सजातीय का चढ़ा है कि विजातीय का चढ़ा है ये भी नहीं पता, और क्या क्या चीज़ें वो खाने वाला है और कैसा उसका रहन सहन है और कैसा उसका परिवार है, कैसी उसकी वंश परंपरा है। मान लो कोई मुनि निंदक का रक्त चढ़ा दे, या फिर कोई मिथ्या परंपरा या जिसको लोक में गर्हित बोलते हैं, जिनको अच्छा नहीं माना जाता लोक में, ये एक लौकिक व्यवस्था है। यदि ऐसी कोई बोतल चढ़ा दी जाए तो क्या होगा, और जिनको चढ़ाया जाता है रक्त उनके भावों में फर्क आता है, जिसको अनुभव होगा वो जानते होंगे, हमें तो अनुभव नहीं है, लेकिन जिनको अनुभव है वो बताते हैं कि उसके पहले हमारे कुछ अलग भाव थे और अभी कुछ बदले बदले से लगते हैं, असर पड़ता है। नौकर्म जो है पुद्गल द्रव्य जरूर है ये, लेकिन उसका आत्मा से निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा बनता है कि वो बंध के कारण का कारण बन जाता है। बंध का कारण राग, और राग का कारण कोई भी पुद्गल द्रव्य बन सकता है, आया ना समझ में। तो इसलिए ये सारी बातें भी उसके अंतर्गत आ जाती है। तो शरीर स्वभाव से अपवित्र है, फिर भी कथनचित लौकिक शुद्धि की दृष्टि से विचार किया जाए तो स्नान आदि के द्वारा शारीरिक शुद्धता को माना जाता है, और आहार दान और पूजन में प्रवृत्ति भी शास्त्रों में बताई जाती है। अगर आप अशुचित्वानुप्रेक्षा का हठाग्रह पकड़ लो और नहीं शरीर तो अपवित्र होता है, तो फिर भगवान की स्थापना भी नहीं हो सकती, मंदिर भी नहीं बन सकता, पूजा भी नहीं हो सकती, अभिषेक भी नहीं हो सकता, मंदिर में आकर दर्शन भी नहीं कर सकते, आप क्या करोगे। तो वैसा नहीं है, उसकी एक दूसरी व्यवस्था है, व्यावहारिक व्यवस्था अलग है। और फिर अंतरंग अपेक्षा से, स्वभाव की अपेक्षा से विचार करो तो शरीर स्वभाव से अपवित्र है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि रत्नत्रय से वो शरीर पवित्र भी होता है। तो मुनिराज का शरीर भी पूज्य होता है, उनकी आत्मा भी पूज्य होती है, दोनों बातें हैं। और अगर शरीर पूज्य न होता तो फिर सौधर्मेंद्र आकर सुकुमार स्वामी के उस शव की पूजा क्यों करता, और अग्निकुमार देव आदि जो बड़े बड़े सौधर्मेंद्र के साथ आने वाले परिकर हैं, वो सब निर्वाण कल्याणक के बाद भगवान आदिनाथ स्वामी के शरीर को पालकी पर विराजमान करके बड़े धूमधाम से और बड़ी विनय से उसकी पूजा करते हुए वहां ले जाकर अंतिम संस्कार क्यों करते। तो रत्नत्रयधारी का जो शरीर होता है वह भी पवित्र होता है। तो ये सारी व्यवस्था नए विवक्षा से और निक्षेपों से समझने योग्य है। यदि ऐसा न समझें अपन और सिर्फ यही माने कि आत्मा का जो रत्नत्रय गुण है वही पूज्य है, और जिस आत्मा में रत्नत्रय प्रकट है वही पूज्य है, तो फिर ये थोड़ा सा खींचातानी हो जाएगी, और खींचातानी का परिणाम कभी भी शांत नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, उनका शरीर तो सब धातु रहते हैं, वो स्वभाव से शुद्ध माना जाएगा, वैकृत शरीर स्वभाव से शुद्ध है, लेकिन फिर भी पूजन विधि में जो प्रक्रिया है उसका वो देव भी उल्लंघन नहीं कर सकते। उनका शरीर यद्यपि 7 धातुओं से और मलों से रहित है तो भी बिना स्नान किए वो भी भगवान की पूजा नहीं करते, देव भी स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं। वो जैसे ही जन्म लेते हैं पर्याप्तक होते हैं तो उस उपाद शैया से उठ करके वो सर्वप्रथम परिचय प्राप्त करते हैं कि मैं यहाँ कैसे आ गया, तो फिर वो जो वहाँ स्तुतिकर्ता देव होते हैं उनकी प्रशंसा करने वाले, वो बताते हैं कि पूर्व जन्म में आपने ऐसा ऐसा काम किया था उसके परिणाम स्वरूप आप देव पर्याय में उत्पन्न हुए हैं, अब आपका इतना इतना वैभव है और इतना बड़ा परिवार है, वो सारा बता करके फिर उन वो चले जाते हैं वहाँ से। और ये जो हैं सबसे पहले देवगति के नियोगानुसार उस विमान में स्थित अकृत्रिम जिन चैत्यालय की वंदना के लिए और पूजा के लिए स्नान करते हैं, उसके बाद वस्त्राभूषण धारण करके फिर भगवान का अभिषेक और पूजा करो, ये क्रम है। तो ये व्यावहारिक शुचिता जो है ये सर्वत्र मान्य है और इसका संबंध शरीर के स्वभाव से कथनचित नहीं है। मतलब क्या है कि आप नहाएंगे तो आपका शरीर शुद्ध नहीं होगा और देव नहाएंगे तो उनका शरीर शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि उनका शरीर सहज शुद्ध है, वैकृत शरीर, और अपना शरीर सहज अशुद्ध है, औदारिक शरीर। लेकिन फिर भी स्नान करके भगवान की पूजा की जाती है। इस नियम का उल्लंघन न मनुष्य पर्याय में हो सकता है न देवगति में हो सकता है, इसलिए वो नियम है, वो क्रम है, तो उस क्रम से ही पूजा होती है। और दर्शन ज्ञान चारित्र सुख के जनक है अथवा शुभ के जनक है, निर्मल है और नित्य है। नित्य शब्द की व्याख्या करते हुए इतना विस्तार कर दिया कि ये नित्य है माने रत्नत्रय मोक्ष का टिकट तो है, लेकिन वो टिकट अपने पास रखने वाला टिकट है। मोक्ष पहुंचने के बाद भी उस टिकट को वहां पर आप टिकट कलेक्टर के हाथ में नहीं देंगे, यहां छोड़ करके नहीं जाएंगे, मुक्ति के द्वार पर उसको बाहर नहीं रखोगे, वो रत्नत्रय अपने पास ही रहता है सिद्ध अवस्था में। अपाणम जो निंदई गुणवंताणम करे बहुमानम, मन इंद्रियाण विजयी ससरूप परायणो हो। होई है, हो दी है, हाँ ठीक है। नीचे पाठ क्या दिया है, कौन सा नंबर डाला है, 2 नंबर वो पाठ दिया और ब्रैकेट्स में हो ही दिया, ठीक है। हो ही का अर्थ तो बहुत सीधा सरल है, हो जो है एक आदेश हो गया। क्या कह रहे हैं आचार्य, जो अपाणम निंदई, जो अपनी निंदा करता है, माने अपने से कोई भी त्रुटि हो जाए तो फिर अरे मेरी गलती हो गई, ये अपने अंदर ही स्वीकार करने ना अपनी त्रुटि अपराध दोष को, इसको कहते हैं निंदा। गुरु के सामने अपना दोष प्रकट करना उसको कहते हैं गरहा। तो जो अपनी निंदा करता है यानी अपने दोषों को स्वीकार करता है और गुणवंताणम बहुमानम करे, और गुणवंतों का बहुमान करता है यानी गुणीजनों का आदर करता है, मन इंद्रियाण विजयी, और मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, सस्वरूप परायणो हुई, वह स्वरूप में अपने रत्नत्रय में परायण अर्थात तत्पर होता है, यानी जो आत्मनिंदा नहीं करता, गुणीजनों का बहुमान नहीं करता, मन और इंद्रियों को वश में नहीं रखता, वो रत्नत्रय का धारी नहीं हो सकता। स्वस्वरूप, ये दर्शन ज्ञान और चारित्र तीनों ही आत्मा के स्वरूप हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में द्रव्य संग्रह ग्रंथ में यही बात आई है। मात्म रूपन तत्, आत्मा का रूप है वह, क्या दर्शन। फिर ज्ञान के लिए भी वही कहा कि वह भी आत्मा का रूप है, चारित्र के लिए भी वही कहा कि वह भी आत्मा का रूप है। तो इस तरह स्वरूप परायण वही बनता है जो आत्मनिंदा करता है अर्थात अपने दोषों को अपने भीतर स्वीकार करता है और गुणीजनों का बहुमान करता है, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। तस्य सहलो जम्मू तस्य पावसनिज राहुदी तस्य पुण्यम वढ़दी तस्य विसुखम परम होदी। उसी का जन्म सार्थक होता है, उसी के पापों की निर्जरा होती है, उसी का पुण्य वृद्धि को प्राप्त होता है और उसी को परम सुख की भी प्राप्ति होती है। किसको, तो आगे और भी बतला रहे, जो सम सुखणी लीणो बारम बारम सरे अपाणम इंद्रिय कसाय विजयी तस हवे निज्जरा परमा। बड़ी सुंदर गाथा है, कंठस्थ करने योग्य है। अभी शुरू से अपन देखें तो कई गाथाएं ऐसी है जो कंठस्थ की जा सकती है। इसका अर्थ पहले देख लेते, फिर बाद में उन गाथाओं को देखते हैं। जो सम सुख लीणी लो, जो समता के सुख में तल्लीन है और बारंबार अपाणम सरी आत्मा का स्मरण करता है, इंद्रिय कषाय विजयी, इंद्रियों और कषायों पर विजय प्राप्त करता है। इनका क्रम नहीं है, पहले इंद्रियों को जीतो फिर कषायों को जीतो, या फिर पहले कषायों को जीतो फिर इंद्रियों को जीतो, ऐसा नहीं। ज्ञानार्णव ग्रंथ में बतलाया है कि इन सबको साथ में ही जीतना पड़ता है। इंद्रियों और कषायों पर विजय प्राप्त करने वाला जो होता है, तस निर्जरा परमा हवे, उसको उत्कृष्ट निर्जरा होती। अब शुरू से अपन देख लें कौन सी गाथाएं विशेष कंठस्थ करने योग्य हैं। चौथी गाथा, जम किंचिवे उपन्नम तस विनाशो हवे नियमे परिणाम स्वरूपेण विनय किंचिव सासयम अत्थि। वैसे किसी गाथा को पृथक करने की भावना नहीं है, लेकिन मतलब हम ये अपने अनुभव से ऐसा बता रहे हैं कि जो चीज़ हमें ज़्यादा अंदर तक के लगती है वो गाथा है, इनमें से ऐसी हो सकती है। वैसे तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पूरी कंठस्थ कर सकते हैं, पहले करते थे लोग। वर्णी जी के ज़माने में कई ऐसे विद्वान थे जिनको पूरी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा कंठस्थ थी। किसी को कर्मकांड कंठस्थ था, किसी को जीवकांड कंठस्थ था, किसी को प्रवचन सार पूरा कंठस्थ था, कोई समय सार कंठस्थ कर लेते थे, मूल गाथाएं। और कुछ लोगों ने पंचास्तिकाएं कंठस्थ करी थी। अपने संघ में भी एक थे, वो प्रवचन सार उनको कंठस्थ था। तो ये कंठस्थ करने की परंपरा अच्छी परंपरा है। तत्वार्थ सूत्र भी बहुत लोगों को कंठस्थ था, और बुंदेलखंड में जिसको तत्वार्थ सूत्र कंठस्थ होता था उसका बड़ा आदर होता था। इनको पूरा तत्वार्थ सूत्र मुखाग्र आता है। अब यहाँ मालूम नहीं है क्या स्थिति है, हाँ वो तो पश्चात अनुपूर्वी से भी हो जाता। नौवीं गाथा भी अच्छी है। वैसे तो इसमें बहुत सारी गाथाएं हैं, अनित्य अनुप्रेक्षा की तो एक से बढ़ के एक गाथा है। दसवीं भी बड़ी सुंदर है, नौवीं दसवीं।